बहुत बहुत स्वागत है। अभी कीर्तन करेंगे पहले, उसके बाद श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये पंखा मेरा चला दो, गर्मी है यहाँ पर।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ ग्रीवर धारी, गोपी जन वल्लभ ग्रीवर धारी, यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ ग्रीवर धारी, यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम
आज जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसमें हरि नाम को बहुत महत्ता दी गई है ना। तो हम भी हरि नाम कर रहे हैं अभी, तो सब ताली बजा करके आनंद से झूम करके हरि नाम कीजिए। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए खूब हरि नाम कीजिए। मृदंग और कोई बजाने वाला नहीं है, आप बजाओ ना मृदंग। हाँ बजाओ, इनको दीजिए मृदंग बजाएंगे ये। किसी को नहीं बजाने आता, कैसे ब्रह्मचारी है ब्रह्म मृदंग। मृदंग तो हमारा जरूरी है इस कौन में, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, करताल और मृदंग। तो ठीक है,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गौर हरि। जय कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। निताई गौर हरी बो हरी बो हरी बोल हरी बो, निताई गौर हरी निताई गौर हरी बो हरी बो हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज काचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडर चार्य सीवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज काचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। ऑल ग्लोरी टू योर हंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू योर हंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरी टू शील प्रभुपाद शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। पहले बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सब बोली साथ में ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्र जातं सगना रघुनाथानितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामी। वांछाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्य नर्म चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जया मुद्रियत नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 और श्लोक संख्या है 40। मैं पढ़ूंगा आप सुनिए पहले। ततो आचार्यां हरिं केचित् संसद्धाया सपरया उपासित उपास्तापि नार्थदा पुरुषा दुषाम। अभी मेरे पीछे दुराने की कोशिश करिए। ततो अर्चायम हरिम केचित् संसद्धाया सपर्या उपासत उपास्तापी नार्थदा पुरुष दुषाम। ततो अर्च्याम हरिम केचित् संसद्धाया सपर्या उपासित उपास्तापी नार्था पुरुष दिशाम। अभी पढ़िए। ततो अर्चायम हरिम केचित् चायम हरिम केचित् संसिद्धाय सपर्या उपासत उपास्तापी नार्ता पुरुष दिशाम। माताजी ततार्चायम हरिम केचित् संश्रद्धाया सपर्या उपास्तापि ततो आचार्यं हरिं केचित् सपर्या नार्ता पुरुष दुषाम। शब्दार्थ मेरे पीछे दुराइए। ततः तत्पश्चात अर्चयाम अर्च्य विग्रह हरिम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं स्वरूप जो श्री भगवान से अभिन्न हैं जो भगवान का अर्च विग्रह होता है वो भगवान से अलग नहीं है सेम है कोई अंतर नहीं है उसमें। केचित कोई संश्रद्धाय महान श्रद्धा सहित सपर्या आवश्यक साज सामग्री सहित उपास्ते पूजा करता है उपास्ता सॉरी उपास्ता अपि यद्यपि श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करते रहने पर भी न नहीं अर्थदा लाभप्रद पुरुष द्विषाम भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करने वालों के लिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनिए। कभी कभी नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है परंतु भगवान श्री विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण श्री भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक दिन परसों चौथ की बात है शायद एक भक्त ने कहीं प्रश्न किया था नवजिंदर स्वामी महाराज बैठे थे यहां पर, उन्होंने जवाब भी दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसका यही जवाब है, उन्होंने प्रश्न किया था कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत सुनने से या भागवत भक्त की सेवा करने से अक्सर प्रायः ऑलमोस्ट अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं सारे उसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर उनका प्रश्न यह था कि ये ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्यों लिखा है, ऑलमोस्ट क्यों लिखा है बीच में प्रायः, तो उसका जवाब इसमें भी आ गया है, इसी श्लोक में उसका जवाब है। आप चाहे जितनी मर्जी भक्ति कीजिए, अर्च विग्रह की पूजा बड़े नारद पंचरात्र विधि से कीजिए, लेकिन यदि आपने भक्तों का कोई अपराध किया है तो वो माफ नहीं होगा, इससे उसके लिए और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, और जिस भक्त के प्रति आपने अपराध किया है उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी तब जाकर के। जबकि भागवतम इतनी शक्तिशाली है कि लगभग सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लगभग लगाया उन्होंने साथ में प्रभुपाद जी ने इसकी अंग्रेजी में लिखा ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो फिर बाकी बचा गया, जब पूरे खत्म हो गए तो बचा गया, बचा वही है कि जो भक्तों के प्रति वैष्णव के प्रति अपने अपराध है वो नष्ट नहीं होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं तो फिर भगवत धाम कैसे जाएंगे, मुक्ति कैसे होगी, ठीक है नहीं। तो इसका जवाब यह है, मेरे पीछे दोहराइए इसको, कभी कभी नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है। जैसे पूले पहले पहले बताया कि अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सेम शक्ति है उसमें, आप चाहे तो भगवान से बात भी कर सकते हैं अर्च विग्रह से, बहुत सारे उदाहरण है हमारे, है ना, भगवान ने गुआइयां भी दी, वो बहुत मशहूर कहानी है जो ब्राह्मण और एक बूढ़ा ब्राह्मण और एक लड़के की, है ना, हाँ, तो उन्होंने जाके गुआई दी थी ना पंचायत में जाकर के, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे परसों भी कल भी आप सुन रहे थे, भगवान ने लड्डू खा लिया पूरा, आधा बच गया, है ना। तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है या संगमरमर की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि अर्च विग्रह की कोई बड़े साज सामान के साथ धूप बत्ती फूल लंप सब कुछ करता है पंचरात्र विधि के साथ, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति अगर वो ईर्ष्यालु है तो भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी शब्द जुड़ा है, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो बड़ा ये याद करने वाली बात है, ये ध्यान रखिए इसको हमेशा, कभी किसी वैष्णव का अपराध मत कीजिए। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो अगर आपसे सीनियर भी है तो उसको प्रभु जी मैंने तो ऐसे पढ़ा था तो आप ये कर रहे हैं, तो उसको मतलब तरीके से उसको बोल दीजिए कि ये, तो जिससे वो बुरा भी नहीं मानेगा, अपराध भी नहीं होगा आपका, और जो आपसे जूनियर है मान लिया छोटा है बाद में आया है तो उसको भी समझा सकते हैं ऐसे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है ये, तो मान जाएगा, वो गलतियां हो जाती हैं सभी से, मनुष्य तो गलती का पुतला है ना, तो कोई ना कोई गलती तो हमेशा किसी से हो जाती है, तो उसको ये नहीं पूरे मंदिर में प्रचारित कर दो फलाने भक्त ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, सारी उम्र उसका गाना गाते रहो। लोगों को बताने की बजाय उसको खुद समझा दो तो समझ जाएगा। और अगर लोगों को बताओगे जाकर के इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया, तो वो अपराध हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाती है। दोबारा पढ़ता हूं इसको। कभी कभी नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्चना पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है, परंतु भगवान श्री विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण श्री भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अर्चा विग्रह पूजा विशेष रूप से नए भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। पहले युगों में भी अर्चा विग्रह की पूजा होती थी, वैसे त्रेता युग में भी है। भगवान राम जी की विग्रह रघुकुल में थी, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं, रघुकुल में जो भगवान राम उसी में अवतार लिए ना बाद में। सूर्य देव की भी पूजा करते थे वो, क्योंकि सूर्य उनका कुल देवता है, और भगवान राम जी की विग्रह भी थी वहां पर, तो उसी पूजा उन्होंने की है। तो पहले भी की, लेकिन इतना चलन नहीं था पहले, और तपस्या करते थे लोग, जंगलों में जाते थे, क्या क्या करते थे, समाधि में लगाते थे, ध्यान लगाते थे। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि अर्च विग्रह की पूजा भी होती थी, और खास करके जब जो भक्त हैं तपस्वी हैं उनकी उनसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, तब से ये भी तरीका बनाया गया कि मंदिर बना करके, या मंदिर के बिना भी आप कहीं भी कुटिया में भी अर्च विग्रह रख करके उसकी पूजा करें, ताकि जो हमारे जो नए भक्त हैं हम लोग, तो कोई गलतियां हो जाती हैं तो उससे भगवान क्षमा कर दे, धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाए सेवा करने की। तो ये भी एक तरीका था अर्च विग्रह के। द्वापर युग में ज्यादा ये शुरुआत हुई है मंदिर मार्जन की, लेकिन कलयुग में तो मंदिर तो हैं बहुत सारे हैं। मैं एक दफा यमुनानगर हरियाणा में गया, एक दफा किसी शादी में गया था, बहुत बड़ा मंदिर, और पीछे उसके शादियां शुदियां करने वाले या सब उनके लिए वो उनकी भी भवन बने हुए थे, काफी बहुत बड़ा मंदिर था वो। तो हमारी आदत तो है तो 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर घर में तो अलग बात है, लेकिन अभी मंदिर में ठहरे हैं तो चलो मैं मंदिर की आरती करेंगे। तो मैंने पुजारी से बोला रात को कि कितने बजे उठते हो आप पूजा करने के लिए, नहीं 5 बजे हम मंदिर खोल देते हैं। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है मैं 5 बजे आ जाऊंगा। मैं 5 बजे वहां पर पहुंच गया, पर मंदिर अभी खुला नहीं था, पुजारी जो है वो अपने कमरे से उठ के सिगरेट पीता हुआ आ रहा है, और आकर के पता नहीं हाथ भी धोए कि नहीं धोए लिए थे, शायद हाथ धो करके नहाया तो क्या होगा, वो आंखें तो उसकी लग रही थी नहाया नहीं है ये, और शंख बजा दिया और मंदिर खोल दिया, अंदर पूजा अर्चना नहीं की। अभी तुमने वो अगरबत्ती वगैरह कोई नहीं, नहीं लोग अपने आप आएंगे ना तो वही जलाएंगे धूप अगरबत्ती, जहां पर सवेरे सवेरे लेडीज वगैरह बहुत आती वहां पर। तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है मंदिर की पूजा में अर्च विग्रह की पूजा करना, बहुत मुश्किल है, लोग करते नहीं है। मंदिर तो बना रखे हैं लेकिन किराए के पुजारी वो रख दिए हैं, वो मर्जी से मालक को दिखाने के लिए 5 बजे शंख बजा देता है ताकि भी देखो जी आरती शुरू हो गई है। और आजकल तो वो घंटे और मृदंग भी ढोलक भी ऑटोमेटिक बिजली वाले बनते हैं ये, प्रभुपाद जी ने ये अर्च विग्रह हमारे इस्कॉन में शुरुआत की है ठीक ढंग से। वृंदावन के मंदिरों में भी होती है, लेकिन सभी मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। भगवान की एड्रेस जो है वो भी नहीं बदलते हैं, साल में एक दफा जन्माष्टमी को या रामनवमी को बदलेंगे, और अपने एड्रेस जो है ना बदलते हैं दिन में दो दो बार, तीन दिन बार। तो ये फिर अर्च विग्रह थोड़ी हुई, वो भगवान थोड़ा मानते हैं, उसको तो पत्थर की मूर्ति मानते हैं इसका मतलब। खैर वैसे जो कलयुग में बहुत मुश्किल है अर्च विग्रह की पूजा करना, इसको वाले कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए इसके लिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अर्चा विग्रह पूजा विशेष रूप से नए भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और कुछ ना कर सको, आप प्रचार करो। प्रचार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, कहां पर बोलते हैं, थार में अध्याय में बोलते हैं ना, कौन सा श्लोक है, 68 वो भगवान बोलते हैं, जो मेरे नामों का प्रचार करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। श्रीमद भगवत गीता में, हाँ ये आ गया, 18:69 में कहा गया है, ना चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मान्यता चाहता है, भगवान आपको रिकॉग्नाइज करें, तो क्या करना चाहिए, श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। आप जितना भगवान का प्रचार करेंगे ना, आपका उससे ज्यादा प्रचार हो जाएगा। जो भगवान का प्रचार करते हैं, दुनिया भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों का प्रचार भगवान से भी ज्यादा हो जाता है। अभी प्रभुपाद जी ने कृष्ण का प्रचार किया पूरी दुनिया में, तो अभी देखिए प्रभुपाद जी को सब दुनिया के लोग जानते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो प्रभुपाद जी के विषय में नहीं जानता हो। तो आप भी अगर भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, तो खूब भगवान का प्रचार कीजिए। अतएव जो व्यक्ति अर्च विग्रह की पूजा करता है, उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का वो तो जो प्रचारक है अतिशय प्रिय है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो अर्च पूजा अर्चा विग्रह की पूजा करता है, मतलब पुजारी है, उसको ऐसे प्रचारक भक्त का बड़ा आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उसको। अन्यथा केवल अर्च विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में ही पड़ा रहेगा, आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। सो जैसे पहले बताया कि अर्च विग्रह की पूजा जो है त्रेता युग में भी थी, थोड़ी थोड़ी थी, द्वापर युग में ज्यादा हुई, कलयुग में भी है, लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल हो रहा है, नारद पंचरात्र विधि से हम नहीं कर पा रहे हैं। सो नारद जी ने इसके पहले अध्यायों में ब्रह्मचारियों के बारे में, ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थ को कैसा होना चाहिए, ये चीजें डिस्कस की हैं, बताया है। और इस अध्याय में आदर्श पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, अभी गृहस्थों के बारे में बताया है। ये केवल गृहस्थों के लिए लागू नहीं है, ये सबके लिए लागू वैसे तो, लेकिन खास करके गृहस्थों के लिए तो है ही है ये वाला अध्याय है। आदर्श पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए, भाई देखिए, जब ये शरीर मिला है
तो इसका पालन करने के लिए, जीव को उपार्जन करने के लिए कुछ काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, बिना धन के तो नहीं होएगा ना। लेकिन उतना पैसा कमाओ, ऐसा कोई काम कीजिए जिससे मैं, मेरा परिवार जो है वो ठीक तरह से उनका पालन पोषण हो जाए, और बाकी जो समय बचा है उसमें हम कृष्ण भक्ति करें। सुबह शाम पूरे परिवार को बैठा करके घर में कीर्तन कीजिए, शाम को भी कीर्तन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और मंदिर पास है तो मंदिर में आइए। डेली नियम होना चाहिए हमारा, डेली मंदिर आइए, और मंदिर अगर दूर है तो घर को मंदिर बनाइए और वहां पर कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ज्यादा असक्त नहीं होना है परिवार में भी, और अपने जीवन को बड़ा जटिल नहीं बनाना है। ऐसा आसान तरीका ढूंढिए जिससे कि मैं अपने परिवार और खुद का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकूं, और भगवान की भक्ति भी कर सकूं। और जितना हम जटिल बनाएंगे शरीर, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे, गधे की तरह काम करेंगे वहां पर, तो जीवन जो है नरक बन जाएगा। भगवान की भक्ति करने का समय आपको मिल नहीं पाएगा, ओवर टाइम करेंगे। तो यहां पर शास्त्र कहते हैं हमें अपने जीवन को ज्यादा जटिल नहीं बनाना है। एक्चुअली जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है वो इसीलिए बनाया है, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इसलिए बनाए हैं कि अपना अपना काम करते करते, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना, पूरे समाज को एजुकेट करना भगवान के बारे में, और समाज में कुछ दस नंबर भी होते हैं तो वो उपद्रव करते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्षत्रिय चाहिए, और वैश्य जो हैं वो खेतीबाड़ी, क्योंकि अनाज चाहिए, खेतीबाड़ी करें, गाय पालें, और जो शूद्र हैं वो इंजीनियरिंग का काम करें। गांव में देखा होगा पहले सबने आपने, जो घर में दात्री बनाने वाला, खुरपा बनाने वाला, फावड़ा बनाने वाला कौन था? वो ये तो थे, उनको आप शूद्र बोल दो, शूद्र कोई बुरी लफ्ज नहीं है, वो इंजीनियर ही थे सारे। मकान कौन बनाता था? लकड़ी का काम कौन करता था? तो अपना अपना काम करते हुए गांव में ही रह करके जीवनोपार्जन भी हो जाए, और फिर शाम को बैठ करके सारे जने भगवान के नाम का कीर्तन करें। ये पर्पज है ये समाज का वर्ण बनाने का, ताकि सब भगवत धाम जा सके। भगवान ने ये तरीके बनाए हुए हैं, भगवान सबके माता पिता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये समाज में रह करके, इस भौतिक जगत में रह करके हम दुख उठाएं, इसलिए उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है, ताकि अपना अपना काम करते करते भगवान का नाम भी जाप करें और इस भव सागर से हम छूट जाएं। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे यहां पर क्यों दुख उठाना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, और छोटी छोटी बहुत तकलीफें हैं, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी आती है, कभी चलते चलते गिर जाते हैं और घुटना टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, उसका इलाज भी नहीं होता, पूरा पूरी उम्र फिर लंगड़े होना पड़ता है। तो ये इस प्रकार के दुख हैं, क्या इसका कोई इलाज है कि नहीं है? इस भव सागर से निकलने का कोई उपाय है कि नहीं? इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म जिज्ञासा करना, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, इनके दोषों से बचे रहें। ठीक है, सत्य ये भी है कि पैसा भी चाहिए भैया, ठीक है, भक्ति भी करेंगे हम, पैसा भी चाहिए। तो पैसे के लिए आपने, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि अपना पालन पोषण, पेट का पालन पोषण करना है, शरीर का पालन पोषण करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, तो उसके लिए ऐसा धंधा ढूंढिए कि बड़ी आसानी से हम भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकें, भगवान के नाम का कीर्तन भी कर सकें। और जब हम ये कोशिश करेंगे ना, तो सच माने भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे ऐसा जीवो उपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए, ऐसा धंधा करने के लिए, ऐसा व्यापार करने के लिए, या ऐसा काम करने के लिए भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल देगा, ये विश्वास रखिए। हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है भैया, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो समाज में रह करके अपने जीवन को जटिल मत बनाइए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल बना दिए, इजी। बड़ा कठिन बनाएंगे तो फिर और फंसते जाएंगे, और फंसते जाएंगे, फिर वहां से निकल नहीं पाएंगे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा कहा गया ना, प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है, सिंपल लिविंग, हमारा जीवन जो है सिंपल सरल होना चाहिए, बड़ा जटिल नहीं होना चाहिए। जैसे पहले युगों में ब्रह्मचारी वगैरह थे जो, या सन्यासी थे, तो तेल नहीं लगाना है सिर में, बाल नहीं काटने हैं, सुरमा नहीं डालना है, मालिश नहीं करनी है, बहुत सारे, धरती पे सोना है, और गुरु जब तक नहीं बोलता है तब तक खाना भी कुछ नहीं है, मांग के लाना है। चाहे आप बड़े बाप के बेटे हो, राजा के बेटे हो, लेकिन गुरुकुल में गए हो तो आपको भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते मैं कि भाई मैं तो खरीद के ला सकता हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मेरे बाप का तो कारखाना है, या मैं राजा का बेटा हूं तो मैं बाप से पैसे लेकर के ले आऊंगा खाने के लिए, गुरु के लिए भी, और अपने जो मेरे सहपाठी हैं उनके लिए भी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप राजा के बेटे हैं, चाहे आप कोई भी हैं, भिक्षा मांगनी पड़ेगी और आकर के गुरु को अर्पण करना पड़ेगा। और गुरु अगर भूल गया, नहीं आज नहीं है, तो फिर उस दिन भूखा भी रहना पड़ेगा। तो बड़े कड़े नियम हैं ये, लेकिन कलयुग में क्या ये पालन कर सकेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इस्कॉन में कोई भक्त नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे, या जंगलों में कुटिया बना करके बुलाएं लोगों को कि यहां आकर के भक्ति सीखिए, भक्ति करिए, तब भी कोई नहीं जाएगा आजकल के जमाने में। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वैसे मंदिरों की वैसे जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि लोगों को प्रचार भी करना है ना, जंगल में तो कोई आएगा नहीं, पेड़ के नीचे कोई आएगा नहीं, कुटिया में कोई आएगा नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, मंदिरों के साथ रहने की जगह भी बनाई, अटैच बाथ भी बनाए, ताकि दूर भी ना जाना पड़े। नहीं तो पहले तो नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, टॉयलेट जाने के लिए भी आपको 2 किलोमीटर परे जाना पड़ता था आश्रम से, घरों में भी ऐसा ही था पहले। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना सरल कर दिया कि कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहां पर ही मंदिर है, वहां पर ही आश्रम है, आश्रम के साथ ही अटैच बाथ बना दिए हैं, ताकि आप भक्ति करो। तो इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना है। नहीं तो अगर इसका लाभ नहीं उठाते हैं हम तो हमारे से अभागा कोई हो नहीं है। वो पहले जमाने में चलता था लेकिन आजकल मुश्किल है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, थोड़ा सा उसको कष्ट होगा कमरे में रहने के लिए, एसी नहीं चल रहा है या हीटर नहीं चल रहा है, नहीं मैं तो जा रहा हूं मैं तो जा रहा हूं। लेकिन प्रभुपाद जी सहन करते थे, मुझे याद है बंगाली मार्केट में सर्दी के दिन थे तो उनको जो कमरा दिया गया बड़ा ठंडा मार्बल लगा हुआ था, देखते ही ठंड लगती थी उसको, और उसमें प्रभुपाद जी का क्या बोलते फोल्डिंग लोहे वाली पलंग बिछा दिया और उस पर सला दिया, हीटर भी नहीं है। तब मैंने फिर प्रेसिडेंट को बोला, तेजस थे प्रेसिडेंट अमेरिकन थे, वो हीटर तो लगाइए। लेकिन प्रभुपाद जी सहन कर, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, प्रभुपाद जी सहन कर सकते लेकिन हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं। तो वो जमाना और था लेकिन अब जमाना बदल गया है। अभी आप किसी को भक्त बनाना चाहते हैं तो उसको थोड़ी सी फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी आपको, तब आप लोगों को अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि आज कलयुग में तो हाँ सब चीज उल्ट पुल्ट हो चुकी है, कोई बात नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कहती है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, बड़ा आसान, क्या है, कलो दोष निदे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचित। आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, मंदिर में नहीं आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण का कीर्तन कीजिए। बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं मत बनाइए, वैसे बनाने जरूरी हैं, बनाएंगे नहीं तो कैसे, जैसे मैंने बोला पहले, बनाएंगे नहीं तो लोग आकर्षित कैसे होंगे। बड़े बड़े अच्छे मंदिर होंगे तो लोग आकर्षित होंगे और भगवान के साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुख्य जो काम है कलयुग में वो है क्या है, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्णस्य मुक्त संग प्रम्बर्येत। यद्यपि कलयुग में तो दोष ही दोष है लेकिन एक अच्छा गुण यह है कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सिर्फ यही कर करके और कुछ करें ना करें। साथ में प्रभुपाद जी ने पूजा अर्चना भी बताई है लेकिन जैसे शुरू में कहा कि पूजा अर्चना करने के बाद हम भक्तों का अपराध करते हैं तो फिर काम नहीं बनेगा। सो कलयुग का धर्म क्या है, हरिर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतरन्त। कलयुग का धर्म है हरिनाम कीर्तन, इसी से भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन मिला इसलिए है, हमें इस भव बंधन से छुटकारा पाना है। अगर हम दुनिया भर के काम करते हैं लेकिन अगर भव बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो सारा बेकार गया। तो मनुष्य जीवन जो मिला है भव बंधन से छुटकारा पाना और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से, इसका कीर्तन करने से मिल जाएगा आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये इतनी शक्ति है, इसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भव बंधन से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, भगवान का प्रेम भी मिलेगा और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग भी करते हैं कुछ लोग ना भौतिक चीजें मांगने के लिए ना, भौतिक चीज नहीं, ना नम ना जनम ना सुंदरम कविताम बाज, ये नहीं चाहिए कुछ भी, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चाहिए मुझे, जयकर कीर्तन करना है, कीर्तन करना है, जाप करना है, यही चाहिए। लेकिन ये ऐसी बातें जो हैं हमें भगवत भक्तों के द्वारा ही सुननी चाहिए, वो बताएंगे सही बात। लेकिन अगर हम किसी गाने की बात सुनेंगे तो हम बड़े भावुक हैं, बच्चे जो लोग हैं ना बड़े भावुक हैं। जैसे बचपन में हम सुनते थे, बचपन में जवानी में मुझे बड़ा अच्छा लगता था भजन है ये, बाद में पता चला कि ये भजन तो मायावादी है। वो एक गाना था, मेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, ये कहां लिखा भैया भगवत में? लेकिन सब लोग सुनते थे ये, बड़ा बड़ा अच्छा भजन है, बड़ा अच्छा, मैं भी सुनता था। लेकिन जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी, पता चला ये तो फार बकवास है, ये तो ये भजन थोड़ा है ये कोई। लेकिन सब नाचते थे, हम में भी बाकी लोग भी नाचते थे। इसलिए एक और है, जैसे हमारे इस्कॉन में भी वो गाना शुरू कर दिया था लोगों ने, कौन सा बड़ा, हरी से बड़ा हरी का नाम अंत में निकला, कहां लिखा है ये, कहां लिखा है? लोग सब हमारे इस्कॉन के भक्त भी नाच रहे हैं, बड़ा अच्छा भजन है, हरी से बड़ा हरी का नाम, कहां लिखा है? भागवत में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, या कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन गाना बना दिया, हरि से बड़ा हरि का नाम, सब गा रहे हैं, इसका मतलब भगवान भगवान जो है झूठे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने बोला ना क्या, नाम नामकारी बहुधा निज, अपनी शक्ति पूरी नाम में भर दी हुई है, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में, कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो फिर बड़ा कैसे हो गया? भगवान कृष्ण से कृष्ण का नाम बड़ा कैसे हो गया फिर? चैतन्य महाप्रभु जी ने गलत बोला है क्या ये? सो ऐसे गानों के चक्कर में मत पड़िए। जो भजनीक है ना, वो भाव में ये गाने गा देते हैं सारे, हमारे मंदिर में बैठ के भी गा देते हैं, बाहर तो गाते ही गाते हैं, तो उनके शब्दों को समझिए, हमारे ग्रंथों में से परखिए उस बात को, हरि से बड़ा हरि का नाम नहीं है। नाम में भगवान ने पूरी शक्तियां भर दी गई हैं, कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के पैराफर्निलिया में, जितना भगवान का साजो समान है उसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर है। नाम भी उतना शक्तिशाली है जितना भगवान स्वयं है। लेकिन कुछ लोग पता नहीं कहां कहां से उदाहरण ले आते हैं, लेकिन भगवत गीता में, भागवतम में और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि हरि से बड़ा हरि का नाम। तो ठीक है, खूब भगवान का नाम जाप कीजिए, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है ग्रंथों में वैसे चलिए, या जो जो ग्रंथ कह रहे हैं उसके अनुसार चलिए, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। अपनी मर्जी से हम कुछ भी करेंगे, कीर्तन करेंगे या पढ़ेंगे या पूजा अर्चना करेंगे, तब नहीं, किसी के नियंत्रण में रह करके हमें सीखना है कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूं ये ठीक है कि नहीं, जो गुरु ने बताया है उसके अनुसार चलना है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार चलना है। प्रभुपाद जी ने हर एक चीज क्लियर कर दी है ग्रंथों में, तो कृपा करके, प्रभुपाद ने केवल लेवर नहीं किया अपने लिए, आपके लिए लेवर की है, परिश्रम किया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या सच्चाई है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए, अपने जीवन को जटिल मत बनाइए, और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, अपने बच्चों को भी भगवान के नाम का कीर्तन कराइए, अपने माता पिता को भी, अपने सास ससुर को भी, अपने समाज को भी भगवान की भक्ति में लाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए बैठ करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। मंदिर नहीं है तो अपने घर में बुला लीजिए लोगों को, अपने घर में जगह है नहीं, पड़ोसी के घर में, आज हमारे घर में हो गया, कल दूसरे पड़ोसी के घर में कीर्तन करो महामंत्र का, भगवत गीता पढ़ो, आधा घंटा भगवत गीता पढ़ो, आधा घंटा महामंत्र का कीर्तन करो, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा, हमारे मोहल्ले वालों का भी कल्याण होगा, समाजवाद का कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।